एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है।
वो ईश्वर की बेटी बन गई,
वो ईश्वर का बेटा बन गया।
वो ईश्वर की बेटी बन गई।
हाँ, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन के साथ आपके पास आता हूँ। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है विरोध के दिन। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम तेरा नाम पुकारते हैं, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमें जीवित रखने के लिए, हमें जीवन के बहुत सारे आशीषों को देने के लिए। अभी हम तेरे वचन सुनने के लिए आए हैं। मेरे हर एक श्रोतागणों के संग हो कि वे तेरे वचन को सुन करके और समझ करके तेरे राह में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा के अनुसार बतला सकूँ। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। विरोध के दिन। अपने आरंभिक दिनों से ही यहूदी बालक चारों ओर से रबियों की मांगों से घिरा हुआ था। जीवन की छोटी से छोटी प्रत्येक बातों के लिए कठोर नियम निर्धारित थे। मंदिर के शास्त्रियों के अधीन जो युवक विद्यार्थी होते उनसे अनगिनत कठोर नियमों का पालन कराने के लिए वे कट्टर इसराइली आशा रखते थे, परंतु यीशु उन बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता। बचपन से ही वह रबियों और शास्त्रियों के कठोर नियमों से अपने आप को स्वतंत्र रखा। धर्मशास्त्र के पुराने नियम का लगातार अध्ययन करता था और सदा ही उसके होठों पर परमेश्वर ऐसा कहता है होता था। जैसे जैसे लोगों के हालत पर उसके विचार खुलते गए, उसने देखा कि परमेश्वर की इच्छा और समाज की इच्छा में लगातार विरोधाभास रहता है। लोग परमेश्वर के वचन से दूर होते जा रहे थे और अपने काल्पनिक सिद्धांतों को ऊंचे उठाने में लगे थे। वे लोग उन पारंपरिक रीतियों का पालन कर रहे थे जिनमें कोई सद्गुण नहीं थे। उनकी सेवाएं केवल रीतियों के पालन करते रहने की बातें होती थी। जिन पवित्र सच्चाइयों को सिखाना चाहिए था वे उपासना करने वालों को बताई ही नहीं जाती थी। उसने देखा कि उनकी अविश्वासी सेवकाएं के कारण उन्हें कोई शांति की प्राप्ति नहीं होती है। उन्हें यह नहीं मालूम था कि यदि वे परमेश्वर की सेवकाएं सच्चाई के साथ करेंगे तो उनकी आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यीशु इसलिए आया था कि वह परमेश्वर की सच्ची उपासना का अर्थ सिखाए और परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ मनुष्य निर्मित नियमों को पालन नहीं करना चाहता था। उसने उन विद्वान शिक्षकों के नियम या उनके पालन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, परंतु जब उसकी साधारण से साधारण आदतों पर अपेक्ष लगाया गया तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के वचन का उदाहरण दिया। यीशु जिसके भी संपर्क में आया उसे हर प्रकार से सजनता और अर्पणता की भावना द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। क्योंकि वह विनम्र और सुशील था, इसलिए पुरनियों और शास्त्रियों ने सोचा कि सरलता के साथ उसे अपनी शिक्षाओं से प्रभावित कर देंगे। उन्होंने उससे चाहा कि प्राचीन शास्त्रियों और रबियों द्वारा जिन नियमों और परंपराओं को उन्हें सौंपा गया है उन्हें वह स्वीकार कर ले, परंतु उसने उनसे पूछा कि वे बताएं कि पवित्र शास्त्र में वैसा कहाँ लिखा है। वह प्रत्येक उस बात को मानेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परंतु मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों का पालन वह नहीं करेगा। ऐसा लगता था कि यीशु पवित्र शास्त्र को आरंभ से अंत तक जानता था और उन्हें उसी रूप में सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता था। शास्त्री लोग एक बालक द्वारा शिक्षा देने से स्वयं को शर्मिंदा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि पवित्र शास्त्र को परिभाषित करने का काम उनका है और उसे उनके द्वारा बताए गए अर्थों को स्वीकारना होगा। वे उससे कुपित रहने लगे कि वह उनकी शिक्षाओं का विरोध करता है। उनको मालूम था कि उनके रीति रिवाजों को प्रमाणित करने के लिए पवित्र शास्त्र में कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने अनुभव किया कि जहाँ तक आत्मिक बातों का संबंध है यीशु का ज्ञान उनसे अधिक है। फिर भी वे इसलिए क्रोधित थे क्योंकि वह उनके आदेशों को स्वीकार नहीं करता है। उसे प्रतीति कराने में असफल हो जाने के बाद उन्होंने यूसुफ और मरियम से उसके असहयोग करने की शिकायत की। इस प्रकार से उसे डांट और झिड़की भी सहनी पड़ी। अपनी आयु के आरंभ से ही यीशु अपने चरित्र को ढालने में स्वयं कार्य किया। यहाँ तक कि उसके माता पिता के लाड़ प्यार ने भी उसे परमेश्वर के वचन का पालन करने में रुकावट नहीं डाल सके। परिवार की परंपरा के विरोध में जो भी कार्य करता उसका उत्तर होता, वचन में ऐसा लिखा है। परंतु रबियों के प्रभाव ने उसके जीवन को कड़वाहट से भर दिया। यहाँ तक कि अपनी युवा अवस्था में ही उसे धीर गंभीर बनने और चुपचाप रहने के कठिन पाठ को सीखना पड़ा था। उसके भाई लोग, जैसा कि यूसुफ के पुत्र कहलाते थे, उन्होंने भी शास्त्रियों का पक्ष लिया। उन्होंने उस पर दबाव डाला कि परंपराओं को निभाना आवश्यक है क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। उन लोगों ने मनुष्यों के बनाए हुए नियमों को परमेश्वर के वचन से भी अधिक महत्व दिया और यीशु के सच और झूठ की मर्मज्ञ भरी विवेचना को उन्होंने बुरा माना। परमेश्वर की आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करने को उन्होंने यीशु का हट कहकर उसे धिक्कारा। किस प्रकार से वह शास्त्रियों के प्रश्नों का उत्तर देता है, उसके इस ज्ञान और बुद्धि को देखकर उन लोगों ने आश्चर्य किया। उन्हें मालूम था कि उसने विद्वानों द्वारा कोई शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, फिर भी उन्होंने देखा कि वह उन्हीं लोगों का शिक्षक बन गया है। उन्होंने जान लिया कि उसकी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की है और स्वयं उनकी वैसी नहीं है, परंतु उन्होंने उस अंतर को नहीं पहचाना कि उसके पास जीवन का वृक्ष है जो ज्ञान का स्रोत है और उससे वे अनजान हैं। मसीह अकेला ही नहीं था जिसने फरीसियों को उनके कठोर नियमों की अवहेलना करने के कारण विशेष अपराध किए हों। उसने देखा कि धार्मिक महत्वता को प्रतिदिन की जीवन शैली के लिए बहुत ही पवित्रता की दीवार से घेर कर अलग कर दिया गया है। उसने उस विभाजित करने वाली दीवार को ढहा दिया। वह जिन लोगों के संपर्क में आता उनसे यह नहीं पूछता था कि आपका धर्म क्या है, आप किस चर्च के सदस्य हैं। जिनको भी सहायता की आवश्यकता होती वह अपनी सामर्थ भर उनकी सहायता करता। अपने स्वर्गीय चरित्र को दिखाने के लिए सन्यासियों के समान अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लेने के स्थान पर उसने ईमानदारी के साथ मानवता के लिए परिश्रम किया। बाइबल धर्म के अनुसार अपने शरीर का दुरुपयोग करने से भी बचा रहा। उसने सिखाया कि शुद्ध और निष्कलंक धर्म केवल ठहराए हुए समय और विशेष अवसरों के लिए ही नहीं है। हर समय और प्रत्येक विशेष अवसरों पर उसने मनुष्यों के प्रति प्रेममय रुचि दिखलाया और उन पर सहानुभूति के प्रकाश को बरसाया। यह सब फरीसियों के लिए एक प्रकार की ताड़ना थी। इसने यह दिखाया कि धर्म में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है और उनकी व्यक्तिगत हित के लिए विकृत भक्ति सच्ची धार्मिकता से बहुत दूर थी। इस बात ने यीशु के विरुद्ध उनकी शत्रुता को बढ़ा दिया, इसलिए उन्होंने उसकी दृढ़ता को देख बलपूर्वक अपने नियमों का पालक बनाने का प्रयत्न किया। यीशु ने जिसे भी कष्ट में देखा उसके हर एक कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया। उसके पास देने के लिए अधिक धन तो नहीं था, परंतु कभी कभी वह स्वयं भूखा रहा ताकि वह भोजन उन्हें दे जो देखने में उससे भी अधिक दरिद्र लगते थे। उसके भाइयों ने देखा कि लोगों पर उसका प्रभाव उनके प्रभाव से बढ़कर पड़ रहा है। यीशु एक कुशल युक्ति वाले व्यक्तित्व का मालिक था जो ना तो उनके पास था और ना ही वे चाहते थे। जब वे किसी गरीब या दबे पिसे लोगों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते तो यीशु उनसे मिलकर उन्हें उत्साहित करने का प्रयत्न करता। जिन्हें आवश्यकता होती एक गिलास ठंडा पानी देता और चुपके से अपना भोजन उनके हाथों में थमा देता। जब वह उनकी तकलीफों को दूर करता तो जो सत्य वचन वह सिखाता वह उसकी दया के कामों के साथ होता और इस प्रकार से वह उनकी स्मृति में बस जाता। यह सब उसके भाइयों को अच्छा नहीं लगता। यीशु से बड़े होने के कारण वे चाहते थे कि वह उनकी बातों को माने। वे उस पर लांछन लगाए कि वह अपने आप को उनसे उत्तम समझता है और उसे डांट लगाए कि वह उनके शासकों याजकों और शास्त्रियों से अपने आप को ऊंचा समझता है। कभी कभी तो वे उसे डराए धमकाए, परंतु उसने उनकी चिंता नहीं किया और धर्मशास्त्र को अपना मार्गदर्शक बनाए रखा। यीशु अपने भाइयों से प्यार करता था और सदा ही उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करता था, परंतु वे उससे डाह करते थे और अपनी घृणा तथा अविश्वास को प्रकट भी कर देते थे। वे उसके आचरण को समझ नहीं सके। यीशु के साथ उनका बहुत बड़ा विरोधाभास था। वह तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होते हुए भी एक लाचार बालक बना था। संसार का सृष्टिकर्ता और पृथ्वी का मालिक होते हुए भी कदम कदम पर उसके जीवन का अनुभव गरीबी थी। संसारिक गर्व और कल्पना के विपरीत वह आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का स्वामी था। उसने कभी संसारिक बड़प्पन की चाह नहीं किया, यहाँ तक कि दीनता की दशा में भी संतुष्ट था। यह बात उसके भाइयों को क्रोधित कर देती थी। तमाम परीक्षा और हानि के होते हुए भी वे उसकी लगातार शांति प्रियता को समझ नहीं पाए। वे नहीं जानते थे कि हमारी ही खातिर वह कंगाल बना ताकि हम उसके कंगाल हो जाने से धनी हो जाएं। यह हमें मिलता है दूसरा कुरंथियों 8:9 में। अय्यूब के कष्ट और दीनता को जितना उसके मित्रों ने समझा था उससे अधिक वे लोग यीशु के रहस्यमय मिशन को नहीं समझ सके थे। यीशु को उसके भाइयों ने गलत समझा क्योंकि वह उनके जैसा नहीं था, उसका स्तर उनके जैसा नहीं था। मनुष्यों की ओर देखने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए और उनके जीवन में उसकी सामर्थ ना रही। धर्म के जिस रूप को वे मान रहे थे वह चरित्र को नहीं बदल सकता था। वे पौधेने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते थे, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। मत्ती 23:23। यीशु का उनको उदाहरण देना लगातार उन्हें चिड़चिड़ा बना देता था। उसे संसार भर के केवल एक बात से घृणा थी और वह था पाप। वह किसी भी गलत कार्य को बिना दर्द और दुख के नहीं देख सकता था जो उससे छिपाना असंभव था। एक और बाहरी आडंबर वाले जिनके दिखावे की पवित्रता के भीतर पाप से प्रेम रखना छिपा हुआ होता था और दूसरी ओर एक वह चरित्र था जिसकी चाह में परमेश्वर की महिमा करना ही सदा सर्वोत्तम लगता था। दोनों में विरोधाभास तो अवश्य होना था, क्योंकि मसीह का जीवन बुराई की निंदा करता है। उसका विरोध घर बाहर दोनों जगह हुआ। उसके आत्मसम्मान और स्वार्थ रहित जीवन का उपहास उड़ाया जाता था। उसकी सहनशीलता और दया को उसकी कायरता की संज्ञा दी जाती थी। एक मनुष्य के हिस्से में जितनी भी कड़वाहट आ सकती है, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे मसीह ने ना चखा हो। वहां बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके जन्म को लांछित कर रहे थे, और यहाँ तक कि उसके बचपन में उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा था जो उसे हिकारत की दृष्टि से देखते और आपस में खुसुर फुसुर करते हुए उसकी बुराई करते थे। यदि उसने व्यग्रता दिखाई होती या अधीरता के कोई शब्द बोले होते, यदि उसने अपने भाइयों के किसी गलत काम को भी मान लिया होता, तो वह एक संपूर्ण आदर्श बनने में असफल रहता। और इस प्रकार से हमारे उद्धार की योजना के कार्य को पूरा करने में निष्फल हो जाता। यहाँ तक कि यदि उसने किसी एक पाप को भी अनदेखा कर दिया होता, तो शैतान विजयी हो गया होता और संसार खो गया होता। इसी कारण से परीक्षा लेने वाले ने उसके जीवन में परीक्षाओं की झड़ी लगा दी थी, ताकि वह घबरा कर पाप की ओर झुक जाए। परंतु प्रत्येक परीक्षा के समय उसका एक ही उत्तर होता था, वचन में ऐसा लिखा है। कदाचित कभी ही अपने भाइयों को गलत काम करने के कारण उसने डांटा हो, परंतु परमेश्वर की ओर से जो वचन मिला उसे अवश्य ही उनसे कहा। कभी कभी उनके गलत कार्यों में साथ ना देने के कारण उस पर कायर होने का लांछन भी लगा, परंतु उसका उत्तर वही होता, वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब 28:28। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसकी संगति चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसके साथ रहने में शांति का अनुभव होता था। परंतु बहुत से ऐसे भी थे जो उससे बचना चाहते थे, क्योंकि उसका शुद्ध चरित्र उन्हें शर्मिंदा करता था। नवयुवक साथी चाहते थे कि जैसा वे करते हैं वैसा ही वह भी करे। वह सदा ही सुंदर और हंसमुख था। वे उसकी उपस्थिति से आनंदित होते थे और उसकी सलाहों को तुरंत मान लेते थे, परंतु वे उसके नैतिक विचारों से व्यग्र हो उठते और उसे संकुचित मन और संकीर्ण विचारों वाला कहकर आरोप लगाते। यीशु का वही उत्तर होता, वचन में ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। यह हमें भजन संहिता 119:9-11 में मिलता है। बहुत बार उससे पूछा गया कि क्यों तुम अपने आप को अकेला और हम लोगों से अलग का स्वभाव रखते हो। ऐसा लिखा है, उसने कहा, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। यह हमें भजन संहिता 119:1-3 में मिलता है। जब उससे पूछा गया कि वह नासरत के नव युवकों के साथ खेल क्रीड़ा में भाग क्यों नहीं लेता, उसने उनसे कहा, लिखा है, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। भजन संहिता 119:14-16। अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए यीशु ने कभी कोई विवाद नहीं किया। कभी कभी तो उसके कार्य को बिना किसी वजह के बहुत कठिन बना दिया गया, क्योंकि वह बिना शिकायत किए सब करने को तैयार रहता था। फिर भी ना तो वह निरुत्साह हुआ और ना ही असफल रहा। परमेश्वर की महिमा के साय में वह इन कठिनाइयों से ऊपर उठकर जिया। जब कभी उसके साथ असभ्य व्यवहार किया गया, तो उसने बदला नहीं लिया, बल्कि धीरज के साथ उस निरादर को सह लिया। यीशु मन और शरीर दोनों को चंगाई देने वाला था। हर प्रकार के दुखी जो उसके संपर्क में आए, प्रत्येक कष्ट उठाने वाले की उसने सहायता की, उसके करुणा भरे शब्द दर्द निवारक दवा के काम किए। कोई भी नहीं कह सकता था कि उसने कोई चमत्कार किया है, परंतु चंगाई की प्रेम भरी शक्ति उसमें से निकलकर रोगियों तथा पीड़ितों में गई। इस प्रकार से बिना किसी रुकावट के वह बचपन से ही लोगों की सहायता करता रहा। इसलिए जब उसने सामान्य लोगों के बीच अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो लोग खुशी के साथ उसकी सुने। फिर भी बचपन से लेकर युवा अवस्था और फिर पूर्ण रूप से मनुष्य बन जाने तक यीशु अकेला ही चलता रहा। अपनी पवित्रता और विश्वसनीयता द्वारा, जैसा लिखा है, उसने अकेले ही अंगूर के खत्ते को कुचल डाला। लोगों में से कोई भी उसके साथ नहीं था। उसने कष्टकारी बोझ को लेकर मनुष्य के उद्धार की जिम्मेदारी को बड़ी शालीनता से निभाया। वह जानता था कि यदि मनुष्य जाति के सिद्धांत और उद्देश्य में बदलाव नहीं आएगा तो सभी का विनाश हो जाएगा। उसकी आत्मा का बोझ यही था और जो बोझ उस पर आ पड़ा था उसके लिए किसी ने उसे सम्मान नहीं दिया। बहुत बड़े और गंभीर उद्देश्य को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहा ताकि वह स्वयं मनुष्य जाति के लिए एक ज्योति बने। यीशु हमारा उदाहरण है। वह हमारे लिए जिया, वह हमारे लिए उद्धार का दरवाजा खोला। हम उसमें विश्वास कर सकते हैं और जीवन पा सकते हैं। उसके जीवन से हम उद्धार पा सकते हैं। उसके जीवन के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए। आइए हम उसके जीवन को स्वीकार करें और अपना जीवन अनंत जीवन से मिला ले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए पाप पर विजय प्राप्त किया। हम उस पर विश्वास करके हम तुझसे मिल सकते हैं और हम अनंत जीवन पा सकते हैं। पिता, तो हमारे पापों को क्षमा कर और हमें तेरे राज के लिए तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।